31 दिसंबर दिन सोमवार और साल के आखिरी दिन की खबरें दिन भर में लेकर हाजिर हूं मैं सारिका सिंह। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्यसभा में पेश नहीं हो सका तीन तलाक बिल। कांग्रेस ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की।
कि हमने विपक्ष ने एक मोशन दिया है कि इस धारा 125 के तहत कि ये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाए।
और साल 2018 के अखाड़े में किसने दिखाया दमखम, सुनाएंगे आपको कुश्ती के दंगल का एक्शन पैक्ड रिव्यू।
2018 भारतीय कुश्ती के लिए बहुत अच्छा रहा और सबसे अच्छी बात ये थी कि सुशील कुमार की कॉमनवेल्थ खेलों में वापसी हुई। बजरंग पूनिया, विनेश, ये ऐसे खिलाड़ी भारत को मिले।
होंगी और भी खबरें लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। राज्यसभा में आज तीन तलाक बिल को लेकर लाया गया विधेयक पेश नहीं हो सका। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा को 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा इस बिल को पास कर चुकी है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की दोबारा संसदीय चुनाव कराने की मांग ठुकरा दी है। संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को जोरदार जीत हासिल हुई है। सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन ने 300 में से 288 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सरकार ने विपक्ष की ओर से लाए गए धांधली के सभी आरोपों को गलत बताया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार इकबाल चौधरी ने बीबीसी से कहा कि सरकार के अच्छे कामकाज और विपक्ष के कमजोर होने की वजह से इस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं। चौधरी ने कहा,
इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड द वे आवामी लीग द प्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर।
इकबाल चौधरी कह रहे थे कि ये नतीजे अपेक्षित थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में जिस तरह आवामी लीग की मौजूदा सरकार ने विकास का काम किया वो हर तरफ दिख रहा है। सरकार ने लोगों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने का काम किया। मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी का कमजोर होना भी इस नतीजे की वजह है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस की सुरक्षा सेवा FSB ने जानकारी दी है कि उसने अमेरिका के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। FSB ने उन्हें मॉस्को में जासूसी करने के संदेह में पकड़ा है। FSB की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि शुक्रवार को हिरासत में लिए गए शख्स का नाम पॉल विलन है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब रूस और पश्चिमी देशों के संबंध में तनाव बढ़ गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नया राष्ट्रपति तय करने के लिए वोटों की गिनती जारी है। जोसेफ कबीला की जगह नया राष्ट्रपति चुनने के लिए रविवार को मतदान हुआ था। अनुमान है कि आखिरी नतीजे 15 जनवरी तक आ पाएंगे, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन का दावा है कि उसके उम्मीदवार इमैनुएल रमाजानी शेडारी की जीत तय है। विरोधी उम्मीदवार फेलिक्स चिसेकेडी ने भी जीत का दावा किया है। गोमा में रहने वाले जस्टिन नाम के एक वोटर का दावा है कि विरोधी उम्मीदवारों में से मार्टा फायुलू जीत हासिल करेंगे। जस्टिन कह रहे थे कि हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम प्रांतीय नतीजों को 6 फरवरी को प्रकाशित करेंगे। हमें भरोसा है कि मार्टा फायुलू जीत हासिल करेंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में जारी गृह युद्ध में साल 2018 में करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जानकारी दी है कि सीरिया में 8 साल पहले गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक इस साल मरने वालों की संख्या सबसे कम है। हालांकि साल 2011 से अब तक करीब 5,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2014 में सबसे ज़्यादा 76,000 लोग मारे गए थे। इस साल मारे गए लोगों में 6,300 आम लोग हैं, इनमें 1,400 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने अपने एक क्षेत्रीय प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। चैनल के एक स्थानीय टीवी स्टेशन पर अभिनेता जैकी चान की फिल्म प्रसारित की जा रही थी, इसमें एक सेक्स सीन का प्रसारण हो गया। इसे किसी दर्शक ने रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। ये क्लिप वायरल हो गई। ईरान में सेंसर के नियम काफ़ी सख्त हैं। IRIB ने माफ़ी मांगने के साथ टीवी स्टेशन के कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव और मैं हूं सारिका सिंह। हंगामे की वजह से तीन तलाक से जुड़ा नया विधेयक आज फिर राज्यसभा में पेश नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही भी 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सरकार ने उम्मीद जताई थी कि बिल को राज्यसभा में समर्थन मिलेगा, पर बिल को लेकर विपक्ष एकजुट दिखा। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी अपना स्टैंड बदल लिया और विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। इस पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ये कहा,
इतना महत्वपूर्ण देश जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है, चाहे नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, उस बिल को हम बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी के बहस किए, बगैर किसी सिलेक्ट कमेटी में चर्चा किए, बगैर सिर्फ सरकार चाहती है तो इसलिए हम पास करें।
बीजेपी सांसद विजय गोयल ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये राजनीतिक खेल है जिसका मकसद मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने से रोकना है।
मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जब लोकसभा के ऊपर इस बिल पर चर्चा हुई थी उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद जब दूसरी बार लोकसभा के अंदर चर्चा आई उसके बाद फिर कांग्रेस ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया। केवल और केवल इस बिल को जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय जो अत्याचार हो रहा है, सरकार चाहती है कि वो अन्याय अत्याचार ना हो।
तीन तलाक को अपराध करार देने वाला ये बिल पिछले साल भी लोकसभा में पारित हुआ था पर राज्यसभा में अटक गया था। इस बार भी ये लोकसभा में पारित हो चुका है पर राज्यसभा में अगर पास नहीं हो सका तो सरकार को फिर से अध्यादेश लाना पड़ेगा। इस साल खेल के मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का दमखम दिखा। भारत ने महिला और पुरुष पहलवानों के दम पर राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में अपना दबदबा बनाया। यहां तक कि विश्व चैंपियनशिप में भी भारत महिला और पुरुष वर्ग में पदक जीतने में कामयाब रहा। पूरे साल बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम गूंजता रहा। इसके बावजूद आने वाले साल में कुश्ती के खेल में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज मलय नीरव, बजरंग पूनिया से लेकर कोच खलीफाओं, महिला पुरुष पहलवानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर नजर डाल रहे हैं भारतीय कुश्ती पर।
अखाड़ों की नगरी दिल्ली से मलय नीरव का नमस्कार। पॉप फटने से पहले ही शुरू हो चुकी है तैयारी। 10-11 साल का एक बच्चा अगरबत्ती जलाए कुश्ती के अखाड़े के चारों ओर भक्ति भाव से घूमता है। अखाड़े की मिट्टी में घी और हल्दी मिलाई गई है जिसकी खुशबू वाली मिट्टी पहलवानों को चोट से बचाने के लिए दवा का भी काम करेगी। एक पहलवान दूसरे को अपनी पीठ पर उठाए बड़ी तेजी से चढ़ाई वाली सड़क पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सिल बट्टे पर बादाम पिसी जा रही है और ताजा दूध की बाल्टियां भरी जा रही हैं। अखाड़े के भगवान भी लंगोटधारी हनुमान जी हैं। ये दृश्य कोई नया नहीं है, प्राचीन कलाकृतियां भी इन्हीं से भरी हैं। आज फर्क इतना है कि ट्रॉफियों और पदकों की कतार से सजाए जा रहे हैं ये अखाड़े। 1952 में केडी जाधव के ओलंपिक में जीते गए कांस्य पदक के बाद कुश्ती में जो सूखा पड़ा वो 56 साल तक मिटा नहीं। कुश्ती के पितामह गुरु हनुमान 100 साल से ज्यादा जीवित रहने का दावा करने के बाद भी ओलंपिक के स्वर्ण पदक आने के अपने अधूरे सपने की बात करते करते दुनिया से चले गए। कहते गए, मेरी आत्मा तड़पती रहेगी जब तक कुश्ती में ओलंपिक का स्वर्ण पदक भारत नहीं पा लेता।
मेरी आत्मा तरफ से रहेगी जब तक ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा तो। यही मेरी मांग है भगवान से कि मैं ओलंपिक का मेडल दूं, जैसे भारत माँ की जोड़ी में डालूं। मैंने एशिया के कॉमनवेल्थ के तो जोड़ी भर दी है मैंने।
ओलंपिक स्वर्ण पदक भले ही ना पाया हो मगर विश्व स्तर पर पदक जीतने वाले भारतीय पहलवानों की एक लंबी कतार उसी स्वर्ण की ओर निशाना साधे आज खड़ी दिखती है। और यहाँ ख्याली पुलाव नहीं पकाया जा रहा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले 2010 के विश्व चैंपियन सुशील कुमार के गुरु सतपाल 2018 के जाते जाते इस साल भारतीय पहलवानों की उपलब्धियों को गिनाते नहीं थकते।
2018 भारतीय कुश्ती के लिए बहुत अच्छा रहा और सबसे अच्छी बात ये थी कि सुशील कुमार की कॉमनवेल्थ खेलों में वापसी हुई, उन्होंने देश को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। बजरंग पूनिया, विनेश, ये ऐसे खिलाड़ी भारत को मिले कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम दोनों में गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार भारत के 3 मेडल आए और जो लड़कियां हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और अगर वो सीरियस रही, विनेश का मैंने सुना है उसकी अभी शादी हुई है, लेकिन अगर शादी के बाद भी अगर वो अपने को मेंटेन कंट्रोल रखती है तो वो अभी, क्योंकि लड़कियों में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन था उसका, आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन था। अभी पूजा ढांडा है वो भी बहुत अच्छा कर रही है।
साल 2018 पूरे साल बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नामों की धूम रही। बजरंग विश्व चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीतने वाले पहले पहलवान बने। हालांकि स्वर्ण पदक उनके हाथ नहीं लगा और रजत से ही उन्हें संतोष करना पड़ा, मगर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले बजरंग दुनिया के नंबर 1 पहलवान बने, जो गौरव भारत के किसी और पहलवान को आज तक नहीं मिला था। उपलब्धियों के आधार पर 2018 को अपना सर्वश्रेष्ठ साल मानते हैं बजरंग पुनिया।
2018 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और इसमें मैंने काफी मेडल जीते। अब तक का मेरे लिए सबसे बेहतरीन साल था 2018 का, और मैं कोशिश करूंगा 2019 और 2020 भी मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही निकले मेरा 1920 भी।
बजरंग मानते हैं कि भारतीय कुश्ती में सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के ओलंपिक पदकों ने नई जान फूंकने का काम किया। अब पहलवान केवल भागीदारी नहीं बल्कि पदकों पर निशाना साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनाने में लगे हैं।
सुशील भाई ने और योगेश्वर भाई ने कुश्ती का इतिहास बदल दिया है। पहले हमारे पहलवान जाते थे कि भाई हमें पार्टिसिपेट करके आना है, और अब कोई भी टूर्नामेंट में जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो वो ये सोच के जाते हैं कि मुझे मेडल लेके आना है। तो हमारी सोच चेंज हुई है, 8 में मेडल आए, 12 में मेडल आए, तो वो सोच चेंज हुई है और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद हमारे मेडल पे मेडल आ रहे हैं, एशियन गेम्स में भी, कॉमनवेल्थ में भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी। तो उससे हमारी कुश्ती काफी ऊपर गई है और आने वाला जो कुश्ती का भविष्य है वो और भी अच्छा होगा।
सुशील कुमार ने तो 2018 में भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, मगर एशियाई खेलों में उनकी चमक फीकी पड़ गई। बहरहाल सुशील भारतीय कुश्ती के भविष्य के प्रति बहुत उत्साहित दिखते हैं।
मैं मानता हूं कि अब हम सही ट्रैक पे हैं और हमारी कुश्ती बढ़ेगी। उसमें बजरंग बड़ा अच्छा कर रहा है, अभी नए बच्चे दीपक पुनिया है, रवि ने बड़ा अच्छा किया है, सुमित वर्ल्ड के सेमीफाइनल तक गया है, तो सब लोग बड़ी अच्छी हमारी टीम है। पूजा ढांडा ने मेडल जीता है, तो मैं सबको बहुत बधाई दूंगा कि इसी तरीके से वो मेहनत करते रहे।
उधर बजरंग पुनिया को अपने छोटे भाई की तरह कुश्ती के अखाड़े में उतारने के लिए तैयार करने वाले योगेश्वर दत्त की स्वर्ण पदक की भूख भी गुरु हनुमान की तरह ही है।
चैंपियन चैंपियन होता है, आप 2-3-4-5 बार सिल्वर ब्रॉन्ज कितने भी जीत लो, पर आप चैंपियन तो चैंपियन ही कहलाएगा। अगर बजरंग चैंपियन बनता तो आप पूरी उम्र बजरंग वर्ल्ड चैंपियन कहलाता। अच्छी बात है कि 2 मेडल है, एक बजरंग हिंदुस्तान का एकलौता पहलवान ऐसा है जिसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल है। पर हम चाहते हैं कि ये कमी 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत के पूरी वर्ल्ड चैंपियन बन के 2020 में जो पूरे देश जो उम्मीद लगाए बैठा, हमारे दोनों सबसे बड़े दावेदार है विनेश भी और बजरंग की ओलंपिक मेडल की, पर हम चाहते हैं कि 2020 में दोनों गोल्ड जीते और कुश्ती और हिंदुस्तान के खेलों पे एक नए मुकाम तक पहुंचाए।
तो कैसी तैयारी है बजरंग की 2020 के लिए और उससे पहले 2019 की क्या योजना है, पूछा मैंने बजरंग पुनिया से जो फिलहाल जॉर्जिया में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
बहुत अच्छी तैयारी है मेरी, अभी फिलहाल मैं जॉर्जिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अगर पिछले रिकॉर्ड को देखूँ मैं अपने को जो अभी टूर्नामेंट गए हैं ये साल मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को देखूँ मैं कोशिश करूँगा 2020 तक मैं ऐसी परफॉर्मेंस बनाए रखूँ और 20 में भी मैं देश के लिए मेडल जीतूँ ओलंपिक में।
कुश्ती के सारे नामी गिरामी कोच और समीक्षक योगेश्वर दत्त की तरह ही महिलाओं में विनेश फोगाट से 2020 में ओलंपिक स्वर्ण पदक की आस लगाए बैठे हैं। रियो ओलंपिक में बुरी तरह चोटिल होने के बाद स्ट्रेचर पर सवार होकर मैट से लौटी निराश विनेश ने फोगाट परिवार की पगड़ी में एक और कलगी जड़ दी एशियाई खेलों में 2018 में स्वर्ण पदक जीतकर। हालांकि विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाने का दुख उन्हें अब तक सता रहा है, मगर 2020 ओलंपिक के लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं विनेश फोगाट।
इंजरी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हमारा फिटनेस लेवल नहीं है या कुछ भी। रेसलिंग एक ऐसा गेम है कि किसी भी टाइम पे आपको इंजरी हो सकता है और काफी दुख हुआ था जब इंजरी हुआ और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जा पाई थी। मैं भी चाह रही थी कि बजरंग की तरह मेरा भी मतलब अच्छा जाए पूरा साल, क्योंकि दोनों ने हमने अच्छा किया था इस साल और वो कहीं ना कहीं मिस कर रही हूँ, लेकिन वही है कि काफी अच्छे से डील करना आ गया है अभी। तो नेक्स्ट ईयर है, देखते हैं कि भी उसके बाद ओलंपिक्स है तो जितना हम बेस्ट कर सकते हैं और वो बेस्ट अपना करने की ट्राई करेंगे हमेशा।
विनेश के अलावा महिला कुश्ती के अखाड़ों से जबरदस्त जीत की खबर आई 2018 में, जब पूजा ढांडा ने विश्व कप में कांस्य पदक जीता। आत्मविश्वास से सराबोर पूजा को भी ओलंपिक पदक मंच पर टंगी मछली की आंख ही दिख रही है।
देखिए बहुत अच्छा है कि अभी सिर्फ 3 ही महिला पहलवान थी जिनके मेडल थे और मैं चौथी बनी हूँ। इससे कॉन्फिडेंस है और आने वाला जो साल है ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये जो मेडल है ये हमें पॉजिटिविटी देते हैं और साथ ही साथ हमारा जो है वो हौसला बढ़ता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे जा रहे हैं और हमारी जो तैयारियां वो अच्छी हो रही है।
भारतीय महिला कुश्ती टीम के राष्ट्रीय कोच कुलदीप सिंह मलिक को उम्मीद है कि 2020 में महिला पहलवान उस मुकाम को छुएंगी जहां पहुंचना भारतीय महिला पहलवानों के लिए अब तक नामुमकिन रहा है।
2020 के अंदर जो हमारा ओलंपिक होना है उसके ये संभावना कि हम महिला कुश्ती में हम कम से कम 3 मेडल लेके चल रहे, क्योंकि आपने देखा परफॉर्मेंस, दिनेश फोगाट की भी परफॉर्मेंस देखी है, साक्षी मलिक की भी देखी और पूजा ढांडा की भी। हम इन तीनों लड़कियों को किसी को भी हम कम नहीं आ सकते। दुनिया की सबसे बेहतरीन पहलवानों में ये हमारी तीनों पहलवान है और मुझे उम्मीद है कि 1-2 लड़की और तैयार होगी तब तक तैयार हो जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा 2020 के अंदर मेडल देंगे। ये तो पक्का है कि भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
बजरंग पूनिया भी कुलदीप सिंह मलिक के विचारों से सहमत दिखे।
देखिए जब से साक्षी ने मेडल जीता है ओलंपिक में तब से लड़कियां जो छोटी छोटी बच्ची हैं वो भी कुश्ती में आई, उनका भी क्रेज बढ़ा है और कुश्ती मतलब जब से मेडल आया तो लाइफ चेंज होगी कुश्ती की लड़कियों की। तो सब ने सोच बनाई है कि भाई हम भी मेडल जीत सकते हैं। जो पहले माँ बाप अपनी लड़की को अखाड़े में भेजने से डरते थे तो वो अब आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हाँ हम जब साक्षी ने मेडल जीता तो हमारी लड़की भी मेडल जीत सकती है। और उसके बाद अभी विनेश ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, अभी तक हमारा कोई भी गोल्ड नहीं था एशियन गेम्स में लड़कियों में, तो उन्होंने वही इतिहास रचा कि भाई हाँ लड़कियां किसी से कम नहीं और वो और भी अच्छा कर सकती हैं। पूजा ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। 3 पहलवान हमारे ऐसे हैं जो ओलंपिक में दावेदार हैं कि भाई हम ओलंपिक मेडल जीतने की क्षमता रखती हैं जो लड़कियों में, तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों की कुश्ती काफी ऊपर गई है पहले से।
कड़ी मेहनत और सुविधाएं ये हैं मूल मंत्र ओलंपिक पदक मंच तक पहुंचने के लिए, मगर जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है भारतीय पहलवानों को उनको नजरअंदाज करने का वक्त अब नहीं बचा। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या काकरान की बातें सुनकर दिल को झकझोरने वाले कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
कभी कभी दूध के भी पैसे नहीं रहते थे, ऐसी फैमिली से मैं आई हूँ। मैं बहुत ही, आप सोच नहीं सकते कि कितनी दिक्कतों से आज यहाँ पे आई हूँ कि ग्लूकोज का भी हमारे पास जुगाड़ नहीं होता था। और दूसरा 19 साल की उम्र में मैंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिया एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और लगातार दिल्ली को 12 गोल्ड मेडल दिए है लगातार सीनियर में भी। अभी तो आपने इतने कर दिए है पर लेकिन आज तो आप कर रहे हो, पर लेकिन जो गरीब बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे। जिस टाइम पे जायज जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती। तो हम बेशक गरीब है पर लेकिन हमारे मन में करने की इतनी ज्वाला है कि आप नहीं सोच सकते कि हम पानी में भी पहलवानी कर रही हूँ मैं आज।
पहलवानों में उदीयमान सितारों का जिन आर्थिक कठिनाइयों से सामना होता है उस सच्चाई को भला कौन नहीं जानता, कहते हैं बजरंग पूनिया।
कुश्ती में जितने भी खिलाड़ी आते हैं ज्यादातर नॉर्मल परिवार से होते हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ रह भी जाते हैं। बस ये है कि भाई मुझे अच्छे यार दोस्त मिले और घर का सपोर्ट भी रहा और जितने भी मेरे यार दोस्त मिले तो वो हर टाइम सपोर्ट करते थे। तो एक अच्छे दोस्तों का मेरे गांव का पहलवान था मेरे अंदर जो मुझे दिल्ली लेके आया था स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं योगी भाई के साथ और नरेंद्र भाई के साथ दोनों के साथ रहता था उधर। तो एक अच्छे दोस्त का होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है और अच्छा दोस्त होगा तो वो हेल्प करेगा।
और अब गुरु सतपाल से सुनिए कुश्ती के सैकड़ों उदीयमान सितारों की आर्थिक तंगी की दर्द भरी दास्तां।
अभी मेरे पास 400 पहलवान हैं और 400 में से 180 अंतर्राष्ट्रीय हैं, जूनियर कैडेट सीनियर सब में मिला के, और उसमें से कोई 1-2 बच्चा ऐसा होगा जो अच्छे परिवार से होगा, नहीं तो सब मध्यम परिवार से। मतलब अगर उनके माता पिता कुछ घी भी अगर उनको देना है, बादाम देने हैं, तो वो कहीं रिश्तेदारी में से पैसे उधार लेके आते हैं। लेकिन मुझे फखर है, गर्व है कि मैं उन बच्चों को आज भी, क्योंकि मेरा, मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ, पहले था मेरा ओलंपिक मेडल, अब मेरा टारगेट है ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो मैं एक रणनीति बना के जिस तरीके से हम बच्चों की डाइट है, बच्चों को वो है, और तो वो बहुत मुश्किल है उसको चलाना, लेकिन क्योंकि देश के लिए हम अच्छा कर रहे हैं और हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ बस यही है देश का बस देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल दिला रहे हैं।
मौलिक सुविधाओं के अलावा अच्छे कोचों का अभाव भी भारतीय पहलवानों के लिए एक बड़ी समस्या है, खासकर उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की राह पर अग्रसर तो हैं, मगर अब तक पहुंच नहीं पाए। पूर्व चैंपियन और समीक्षक कृपाशंकर का मानना है कि कुश्ती महासंघ को कोचों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
क्या भारतीय कुश्ती संघ अपने कोचिज को प्रमोट करता है? क्या अपने कोचों की क्वालिटी में सुधार करता है? ये एक बड़ा मुद्दा है, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें विदेशी कोचों की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे कोच निष्क्रिय हो जाते हैं। विदेशी कोचों को हम बेहतर क्यों मानते हैं? क्योंकि विदेशी कोच जब हिंदुस्तान में आते हैं तो यहाँ पे उनका बिजनेस नहीं होता, यहाँ पे उनका परिवार नहीं होता, इसलिए वो टोटली ध्यान अपना कुश्ती के ऊपर ही देते हैं। और कंटिन्यूटी अगर किसी खिलाड़ी के साथ रहेगी, किसी कोच की, तो वो खिलाड़ी निश्चित रूप से परफॉर्म करेगा। भारतीय कोचों का और भी बिजनेस है, परिवार है, तो भारतीय कुश्ती संघ को और मिनिस्ट्री को चाहिए कि हम अपने कोचिज की क्वालिटी में सुधार करें, उनके रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करें, उनकी कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए हम उनको प्रेरित करें। भारतीय कोचों की तनख्वाह तो होती है 35,000, 40,000, 50,000, विदेशी कोचों को दे रहे हैं आप 4,00,000, 5,00,000, तो ये पैसा भी बहुत जरूरी है।
पारंपरिक तौर पर अखाड़ों में गुरु शिष्य परंपरा का बेहतरीन उदाहरण सहज ही मिल जाता था, मगर संगीत के घरानों की तरह ही अखाड़ों में बढ़ चुके कुश्ती के घरानों से भारतीय कुश्ती को काफी नुकसान पहुंच रहा है। कुछ को सुविधाएं बेशुमार तो कुछ बंद होने की कगार पर। गुरु सतपाल, जो स्वयं आज सबसे मजबूत और कामयाब छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं, इस सच्चाई को नकार नहीं पाते।
हाँ नहीं, खैर वो खेमे में नहीं बटनी चाहिए, जो हमारी कमजोरी है। अभी हमारे जो अखाड़े हैं, जो पुराने दिल्ली के, खासकर जो 4-5 अखाड़े बहुत नामी होते थे, तो उनका प्रदर्शन में गिरावट आई है। अब वो क्यों आई है, या वहाँ कोच की कमी है, या फैसिलिटी की कमी है, या डिसिप्लिन कम हो गया, क्या हो गया, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे खाड़े, अच्छे क्लब आएंगे, तो हम उतना ही ज्यादा अच्छा कंपटीशन होगा और हमारे ज्यादा से ज्यादा मेडल आएंगे।
सारी परेशानियों और कमियों के बावजूद 2018 भारतीय कुश्ती के लिए एक ऐसी नई सुबह का आगाज करने वाला साल रहा, जिसने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत के लिए पदकों की नई संभावनाओं को जन्म दिया। मगर इन्हीं पदकों में से एक के सबसे बड़े दावेदार बजरंग पूनिया बहुत आहत दिखे, जब सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2018 में ही वंचित रखा गया।
देखिए, खिलाड़ी का सपना होता है, अगर वो उसके योग्य है तो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हुआ। जैसे अब नंबर पॉइंट सिस्टम था, तो उसमें अगर आप नंबर सिस्टम देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर मेरे और विनेश के बन रहे थे। तो एक खिलाड़ी को अगर जो उसका हक बनता है तो उसको देना चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम आप फिर लागू क्यों करते हो, अगर आपको वैसे देना है कि भाई हमें इस आधार पे दे रहे कि वो वर्ल्ड रैंकिंग में है। अगर क्रिकेट की बात करें, मुझे जो मिल रहे खिलाड़ियों को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी, बस मुझे सिस्टम से आपत्ति थी कि भाई वो जिस सिस्टम से चल रहे हैं वो गलत है, उनका जो सिस्टम उन्होंने बना रखा उस पे तो कायम रहे ना।
कहीं पुरस्कार कहीं तिरस्कार, मगर पहलवान कमर कस कर तैयार। 2020 के पहले 2019 में किन किन चुनौतियों के सामने ठोकेंगे ताल भारतीय पहलवान, सुनिए बजरंग पूनिया से।
2019 में ओलंपिक क्वालीफाई स्टार्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप से, तो मेरा लक्ष्य यही है कि भाई मैं पहले क्वालीफाई करूं ओलंपिक के लिए। 19 वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फर्स्ट टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो क्वालीफाई के लिए, उसी में मैं क्वालीफाई करूँ। जो मुझे ट्रेनिंग करने के लिए, जो मेरी कमियां हैं उनको सुधारने के लिए मुझे पूरा एक साल मिलेगा उसके बाद। और मेरा तो यही लक्ष्य है कि भाई मैं देश के लिए अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में मेडल जीतूं।
बहुत अहम होगा साल 2019-2020 ओलंपिक में जगह बनाने के लिए, कहते हैं कृपाशंकर।
साल 2019 में काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा भारतीय पहलवानों का, क्योंकि 2019 के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, विश्व चैंपियनशिप है, और विश्व चैंपियनशिप एक ऐसा मंच है जहां पर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जो पहलवान मेडल जीतेंगे वो 2020 जो 2020 ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए भी वो उसके अंदर क्लियर करेंगे। उसके पहले हमारी नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हो चुकी है, और उसमें हमारे जो बेस्ट ऑफ थ्री रेसलर्स हैं पर वेट कैटेगरी, चाहे वो फ्री स्टाइल हो, ग्रीको रोमन हो या महिला कुश्ती हो, तो सभी में तीन तीन पहलवानों का चयन किया जा चुका है और एक अच्छी उम्मीद है महिला कुश्ती और फ्री स्टाइल के अंदर कि हम काफी कुछ अच्छा करेंगे। और जो हम हर बार ओलंपिक में एक एक पदक जीतते आ रहे हैं 2008, फिर 2012, फिर 2016, तो लगातार जब मेडल जीत रहे हैं तीन ओलंपिक में, भारत में पहला ऐसा खेल है जिसमें लगातार ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, तो इससे कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जो 2020 ओलंपिक में भी भारत एक मेडल से ज्यादा मेडल जीतेगा।
और 2019-2020 से भी आगे की सोचें तो कमी नहीं है युवा पीढ़ी के पहलवानों की, जो सुशील, योगेश्वर, साक्षी, बजरंग और विनेश जैसे कामयाब पहलवानों की जगह लेने को दस्तक दे रहे हैं। सुशील कुमार खुद कहते हैं,
मैं मानता हूं कि अब हम सही ट्रैक पे हैं और हमारी कुश्ती बढ़ेगी। उसमें बजरंग बड़ा अच्छा कर रहा है, अभी नए बच्चे दीपक पुनिया है, रवि ने बड़ा अच्छा किया है, सुमित वर्ल्ड के सेमीफाइनल तक गया है, तो सब लोग बड़ी अच्छी हमारी टीम है। पूजा डांडा ने मेडल जीता है, तो मैं सबको बहुत बधाई दूंगा कि इसी तरीके से वो मेहनत करते रहे और देश के लिए मेडल। हमारे जूनियर बच्चे हमको देखकर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी।
सुशील कुमार के कोच महाबली सतपाल के पास भी कुश्ती के उभरते सितारों की एक लंबी सूची है जो उनके लिए नई उम्मीदें जगाती है।
मैं ये मानता हूँ कि अब हमारे भारत के जो खेल है कुश्ती है वो एक ऊंचाइयों को छुएगी, क्योंकि अभी एक लड़का दीपक पुनिया है हमारा 86 केजी में, बहुत अच्छा है। एक लड़का 57 केजी में है, वो तो ये सोच लो कि अभी इस बार मेरा ये मानना है कि कम से कम 6 बच्चे, नवीन नाम उसका जो 57 केजी में है, अभी वो वर्ल्ड जूनियर में भी सिल्वर मेडल लेके आया है और यूथ ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल है उसका, ऐसी इसका दीपक पुनिया का भी, और ये 6-7 बच्चे हैं कि जो जूनियर के हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो अब क्या ओलंपिक में क्वालिफाई करेंगे। अब आने वाले जो अभी ये जो हमारे नए बच्चे हैं जूनियर के, खासकर जो ये 10-12 बच्चे लड़के हैं जो अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ल्ड जूनियर में, यूथ ओलंपिक में वो मेडल लेके आ रहे हैं, ईरान को हरा रहे हैं, रशिया को हरा रहे हैं, और जो लड़कियां हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं।
तो कुश्ती की दुनिया में जगमगाने वाले सितारों का 2018 का सफर अनवरत जारी रहने की उम्मीदों के साथ मैं मलय नीरव आपसे लेता हूं विदा नए वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ।
और उम्मीद है कि साल 2019 में अखाड़ा और एक्शन पैक्ड होगा। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
राज्यसभा में आज 3 तलाक को लेकर लाया गया विधेयक पेश नहीं हो सका। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा को 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की दोबारा संसदीय चुनाव कराने की मांग ठुकरा दी है। संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को जोरदार जीत हासिल हुई थी। रूस की सुरक्षा सेवा FSB ने जानकारी दी है कि उसने अमेरिका के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। FSB ने उन्हें मॉस्को में जासूसी करने के संदेह में पकड़ा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नया राष्ट्रपति तय करने के लिए वोटों की गिनती जारी है। जोसेफ कबीला की जगह नया राष्ट्रपति चुनने के लिए रविवार को मतदान हुआ था। सीरिया में जारी गृहयुद्ध में साल 2018 में करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। निगरानी समूह सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जानकारी दी है कि सीरिया में 8 साल में पहली बार इस साल मरने वालों की संख्या सबसे कम है। हालांकि साल 2011 में अब तक करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में सरकारी प्रसारक IRIB ने अपने एक क्षेत्रीय प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। चैनल के एक स्थानीय टीवी स्टेशन पर अभिनेता जैकी चैन की फिल्म प्रसारित की जा रही थी, इसमें एक सेक्स सीन के प्रसारण को लेकर विवाद हुआ। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर की खबरों में इतना ही। कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया रवि ने। तो अब सारिका सिंह को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए BBCHindi.com के साथ। नमस्कार।